एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक विशेषज्ञ जो दर्शन और विचारों की दुनिया में गहरी रुचि रखती हैं।
नमस्कार।
और आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो दिखने में तो छोटी सी है पर जिसका असर बहुत बहुत बड़ा रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल की उपयोगितावाद।
हाँ, उपयोगितावाद, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी सा लगता है या शायद थोड़ा सूखा, लेकिन असल में ये किताब उन सवालों से जुड़ी है जो हम शायद रोज सोचते हैं।
बिल्कुल।
क्या सही है, क्या गलत है, और सबसे बड़ी बात, हम ये तय कैसे करते हैं?
हाँ, और ये सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है ना, हम सब अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने काम में, यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं कि भाई देश कैसे चलना चाहिए, कहीं ना कहीं इसी सोच का इस्तेमाल करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा लोगों का भला कैसे हो।
अच्छा, मिल की ये किताब इसी सोच को एक ढांचा देती है, एक आप कह सकती हैं सिद्धांत देती है, सर्वाधिक प्रसन्नता का सिद्धांत। तो आज देखते हैं कि ये सिद्धांत है क्या और क्या ये आज भी हमारे काम का है।
जरूर। तो सबसे पहले, ये जॉन स्टुअर्ट मिल थे कौन? मैंने सुना है कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, उनकी परवरिश काफी अलग थी।
आम तो बिल्कुल नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल मतलब 1806 से 1873 तक वो 19वीं सदी के ब्रिटेन के सबसे बड़े विचारकों में से एक थे। दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, बहुत कुछ थे वो। पर हाँ, उनकी कहानी उनके बचपन से ही असाधारण है।
हाँ, जैसे उनके पिता जेम्स मिल, वो खुद भी विचारक थे और जर्मी बेंथम के दोस्त थे, है ना? बेंथम भी उपयोगितावाद के बड़े नाम हैं। तो उन्होंने जॉन स्टुअर्ट को एक तरह से एक बौद्धिक प्रयोग की तरह पाला।
हाँ, कह सकते हैं एक बहुत ही सघन बौद्धिक ट्रेनिंग थी वो। सोचिए जरा, 3 साल की उम्र में ग्रीक सीखना, 8 साल की उम्र तक प्लेटो और हेरोडोटस पढ़ लेना, फिर लैटिन, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, मतलब आज के हिसाब से तो अकल्पनीय सी लगती है ये पढ़ाई।
बाप रे, बहुत ज्यादा। लेकिन क्या सिर्फ किताबें ही थी उनकी दुनिया में, कोई व्यवहारिक अनुभव भी था?
नहीं, और यही बात उन्हें दिलचस्प बनाती है। उन्होंने करीब 30 साल ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया।
अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी।
हाँ, तो उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रशासन का, राजनीति का, जमीनी हकीकत का भी पूरा अनुभव था। वो जानते थे कि सिद्धांत कागज पर कैसे दिखते हैं और असल दुनिया में कैसे काम करते हैं या नहीं करते हैं।
और शायद इसीलिए वो उपयोगितावाद के सिर्फ मतलब पैरोकार नहीं बने बल्कि उसमें सुधार भी लाए। मैंने सुना है कि युवावस्था में उन्हें कुछ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था।
हाँ, एक दौर आया था उनकी जिंदगी में जिसे वो मेंटल क्राइसिस कहते हैं। तब उन्हें लगा कि सिर्फ तर्क और विश्लेषण ही सब कुछ नहीं है, जीवन में भावनाओं का, कला का, व्यक्तिगत विकास का भी उतना ही महत्व है। उन्हें महसूस हुआ कि बेंथम का उपयोगितावाद, जो शायद सिर्फ सुख की मात्रा नापता था, वो थोड़ा अधूरा है। इसीलिए मिल का उपयोगितावाद ज्यादा मानवीय है, ज्यादा गहरा है। वो सिर्फ सुख की बात नहीं करते बल्कि किस तरह के सुख की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है।
तो ये किताब उपयोगितावाद इसी परिष्कृत सोच का नतीजा है। तो इसका मूल विचार क्या है, एकदम आसान शब्दों में?
बहुत सीधा और शक्तिशाली विचार है, सर्वाधिक प्रसन्नता का सिद्धांत, अंग्रेजी में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। यानी कोई भी काम या नियम नैतिक रूप से सही तब है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी या सुख पैदा करे और दुख को कम करे।
मतलब कर्मों का मूल्यांकन उनके नतीजों से होगा, इस बात से कि असल में भलाई किसकी हुई, खुशी किसको मिली, न कि इस बात से कि नियम क्या कहता है या परंपरा क्या है।
बिल्कुल। मिल कह रहे हैं कि नैतिकता का आधार कोई रहस्यमयी देवीय आज्ञा नहीं या सिर्फ अंदर की आवाज नहीं, बल्कि ठोस, अनुभव करने योग्य चीज होनी चाहिए, और वो है खुशी और दुख। लेकिन मिल ये भी जानते थे कि ये विचार सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। इस पर बहुत से सवाल उठाए गए थे।
हाँ, उठाए जाते होंगे, जैसे कि क्या ये सिद्धांत हमें स्वार्थी नहीं बनाता कि बस अपनी खुशी देखो, या क्या ये हमें सिर्फ शारीरिक सुखों के पीछे भागने वाला जानवर नहीं समझता?
हाँ हाँ, ये कुछ मुख्य आपत्तियां थी जिनका मिल इस किताब में बड़े विस्तार से जवाब देते हैं, और यहीं वो अपना सबसे मशहूर आइडिया लाते हैं, उच्च और निम्न सुखों का फर्क।
अच्छा, उच्च और निम्न सुख।
हाँ, वो कहते हैं कि इंसान होने के नाते हमारे सुख सिर्फ खाने पीने या आराम करने जैसे शारीरिक सुख नहीं है। हमारे पास बुद्धि है, भावनाएं हैं, नैतिकता की समझ है। इनसे मिलने वाले सुख जैसे कुछ नया सीखना, किसी की मदद करना, कला का आनंद लेना, दोस्ती निभाना, ये शारीरिक सुखों से न सिर्फ अलग हैं बल्कि गुणात्मक रूप से बेहतर हैं, क्वालिटेटिवली सुपीरियर।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ कितना सुख मिला ये नहीं बल्कि कैसा सुख मिला ये ज्यादा मायने रखता है। ये तो बड़ी गहरी बात है।
हाँ, और मेल ये भी तर्क देते हैं कि न्याय यानी जस्टिस जैसी चीजें जिन्हें हम अक्सर उपयोगिता से ऊपर मानते हैं वो असल में उपयोगिता का ही सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि बिना न्याय और सुरक्षा के कोई भी खुशी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। तो ये किताब इन सभी पहलुओं को खोलती है बड़ी बारीकी से।
चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर किताब के अध्यायों को देखते हैं। पहला अध्याय है सामान्य टिप्पणियां। इसमें मिल क्या कहते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं?
यहाँ मिल एक तरह से भूमिका बांध रही हैं। वो कहते हैं कि देखिए, हजारों साल से दार्शनिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि सही गलत का पैमाना क्या है, लेकिन आज तक कोई एक राय क्यों नहीं बन पाई। अजीब बात है ना?
हाँ, ये तो आज भी सच लगता है।
विज्ञान में तो हम तरक्की देखते हैं, पर नैतिकता के बुनियादी सिद्धांत पर इतनी असहमति क्यों? मिल कहते हैं कि दो मुख्य रास्ते रहे हैं। कुछ मानते हैं कि नैतिकता हमें अंदर से पता चलती है, सहज ज्ञान से, इंट्यूशन से। दूसरे मानते हैं कि हम अनुभव और तर्क से सीखते हैं। मिल साफ तौर पर दूसरे रास्ते के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि जैसे हर विज्ञान को एक पहले सिद्धांत की जरूरत होती है, वैसे ही नैतिकता को भी एक बुनियाद चाहिए, एक कसौटी जिस पर हम अपने नियमों को परख सके।
और वो कसौटी है उपयोगिता का सिद्धांत। पर वो ये भी मानते हैं कि इसका कोई गणितीय सबूत नहीं दिया जा सकता, है ना?
हाँ, वो कहते हैं कि आप ये साबित नहीं कर सकते कि खुशी ही अंतिम लक्ष्य है, जैसे आप 2+2=4 साबित करते हैं। लेकिन आप ऐसे तर्क दे सकते हैं जो किसी भी सोचने समझने वाले इंसान को इसे मानने के लिए प्रेरित करे। पहला अध्याय इसी बहस के लिए जमीन तैयार करता है।
ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, अध्याय दो, उपयोगितावाद क्या है। यहां मिल सिद्धांत को और साफ करते हैं, सही?
बिल्कुल, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। वो दोहराती हैं, कर्म सही है अगर वे खुशी बढ़ाते हैं, गलत है अगर वे दुख बढ़ाते हैं। खुशी मतलब सुख और दर्द का न होना। लेकिन फिर वो फौरन उन आपत्तियों पर आते हैं जिनकी हमने बात की थी।
हाँ, वो सुअर वाली बात।
हाँ, सबसे पहला हमला ये सिद्धांत तो इंसानों को सुअर बना देगा, बस मजे के पीछे भागने वाला। A doctrine worthy only of swine, ऐसा कहा गया था।
और इसका जवाब है वो उच्च और निम्न सुख वाली बात।
हाँ, और मिल इसे बड़े जोरदार तरीके से कहती हैं। वो पूछती हैं, क्या कोई इंसान चाहेगा कि उसे एक संतुष्ट जानवर बना दिया जाए? अगर उसे बताया जाए कि जानवर के पास कोई चिंता नहीं होती, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उच्च क्षमताएं हैं, हायर फैकल्टीज। पढ़ना, सोचना, महसूस करना, रचना करना, इनसे मिलने वाला सुख, भले ही उसके साथ थोड़ी बेचैनी या असंतोष जुड़ा हो, वो शारीरिक सुख से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है।
यहीं पर वो मशहूर लाइन आती है ना, एक असंतुष्ट इंसान होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है, एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है। वाह, ये तो सीधे मानवीय गरिमा की बात है।
एकदम। और वो कहती है कि इसका सबूत क्या है? सबूत वो लोग हैं जिन्होंने दोनों तरह के सुखों का अनुभव किया है। आप उनसे पूछिए, वो हमेशा उच्च सुखों को ही चुनेंगे।
ठीक है, और दूसरी आपत्तियां, जैसे क्या खुशी पाना नामुमकिन है या ये सिद्धांत बहुत ज्यादा मांग करता है?
हाँ, वो इन पर भी आती हैं। खुशी पाना नामुमकिन है, मिल कहती है नहीं। उपयोगितावाद का मतलब हर पल खुशी से झूमना नहीं, बल्कि जिंदगी में दुख कम करना और सक्रिय सुख बढ़ाना है। और गरीबी, बीमारी जैसी चीजें तो कोशिश करके कम की जा सकती हैं।
और ये कि सिद्धांत बहुत ज्यादा मांग करता है, क्या हमें हर काम करते वक्त पूरी दुनिया की भलाई के बारे में सोचना होगा? ये तो बहुत मुश्किल है।
मिल इसका भी बढ़िया जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि नैतिकता के मानक स्टैंडर्ड और हमारे काम करने के मकसद मोटिव में फर्क करना जरूरी है।
मानक और मकसद।
हाँ, मानक तो यही है कि कर्मों का नतीजा सबके लिए अच्छा हो, लेकिन ज्यादातर समय हमारे कामों का असर हमारे आसपास के कुछ लोगों पर ही पड़ता है, तो हमें मुख्य रूप से उन्हीं की भलाई का ध्यान रखना होता है।
अच्छा,
अगर एक डॉक्टर अपने मरीजों का अच्छा इलाज करता है तो वो उपयोगितावाद के हिसाब से नैतिक काम कर रहा है, भले उसका मकसद सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाना या पैसे कमाना हो। हाँ, अगर उसके काम से दूसरों को नुकसान हो रहा हो तब बात अलग है।
मतलब हमें हर पल संत बनने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि हमारे कामों से किसी का अहित न हो और जहाँ तक हो सके भलाई हो।
बिल्कुल, और इसी तरह वो बाकी आपत्तियों का भी जवाब देती हैं कि ये सिद्धांत भावहीन नहीं बनाता बल्कि सहानुभूति पर जोर देता है। ये नास्तिक होना जरूरी नहीं है और ये सिर्फ तात्कालिक फायदे की बात नहीं करता बल्कि लंबे समय के लिए सबकी भलाई की बात करता है। ये अध्याय असल में उपयोगितावाद का बचाव और उसकी सही तस्वीर पेश करता है।
अब अध्याय 3 पर आते हैं, उपयोगिता के सिद्धांत की अंतिम स्वीकृति। ये स्वीकृति या सैंक्शन शब्द का क्या मतलब है यहाँ?
सैंक्शन का मतलब है वो चीज़ जो हमें किसी नियम या सिद्धांत को मानने के लिए प्रेरित करती है। मतलब हमें उपयोगिता के सिद्धांत का पालन क्यों करना चाहिए, कौन सी ताकत हमें नैतिक बनाती है, प्रेरणा का स्रोत क्या है।
अच्छा, यानी प्रेरणा का स्रोत। तो मिल क्या कहती है, हमें ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, समाज से, अंदर से?
मिल दो तरह के स्रोतों की बात करती हैं। पहले हैं बाहरी स्रोत, एक्सटर्नल सैंक्शंस, जैसे समाज क्या कहेगा, लोग तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे, कानून का डर या फिर भगवान से इनाम या सजा का ख्याल। ये बाहरी दबाव हमें सही रास्ते पर रख सकते हैं।
ये तो हैं, लेकिन क्या ये काफी हैं? कई बार तो हम अकेले में भी सही काम करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, कोई डर नहीं होता।
बिल्कुल, इसीलिए मिल कहती हैं कि सबसे शक्तिशाली प्रेरणा अंदरूनी स्रोत, इंटरनल सैंक्शन, और वो है हमारी अपनी अंतरात्मा, कॉन्शियंस। हमारे अंदर सही गलत की एक भावना होती है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसे हम गलत मानते हैं तो हमें अंदर से तकलीफ होती है, पछतावा होता है। यही हमारी अंतरात्मा है जो हमें गाइड करती है।
और ये अंतरात्मा आती कहाँ से है? क्या ये जन्म से होती है या हम सीखते हैं इसे?
मिल मानती हैं कि ये पूरी तरह जन्मजात नहीं है बल्कि ये हमारी सामाजिक भावनाओं से विकसित होती है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं। हमें दूसरों के साथ मिलकर रहना पसंद है, हम उनकी खुशी गम को महसूस करते हैं, सहानुभूति, एम्पथी।
हाँ,
जैसे जैसे समाज और शिक्षा का विकास होता है ये सामाजिक भावनाएं और मजबूत होती जाती हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हमारा भला दूसरों के भले से जुड़ा है। यही विकसित सामाजिक भावना और सहानुभूति उपयोगितावादी नैतिकता का सबसे पक्का आधार बनती है।
यानी दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करना ही हमें नैतिक बनाता है गहराई से। ये तो बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है, किसी बाहरी नियम से ज्यादा अंदरूनी भावना पर जोर।
हाँ, ये नैतिकता को किसी बाहरी ताकत से हटाकर हमारे अंदर की सामाजिकता से जोड़ता है। अब आते हैं अध्याय 4 पर, जो थोड़ा पेचीदा है। उपयोगिता के सिद्धांत किस प्रकार के प्रमाण के लिए सक्षम है, मतलब मिल कैसे साबित करती हैं कि खुशी ही अंतिम लक्ष्य है?
हाँ, ये सवाल तो बड़ा है। हम कैसे मान लें कि खुशी के अलावा और कोई चीज अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, इसका क्या सबूत है?
जैसा मिल ने पहले कहा था, अंतिम लक्ष्यों का सीधा सबूत नहीं होता, तो वो एक दिलचस्प तर्क देती हैं जो अनुभव पर आधारित है। वो कहती हैं, किसी चीज के देखे जाने लायक होने का सबूत क्या है?
कि लोग उसे देखते हैं।
हाँ, किसी चीज के सुने जाने लायक होने का सबूत क्या है?
कि लोग उसे सुनते हैं,
सब में उसे चाहते हैं।
Desire it.
अच्छा, तो क्योंकि हर कोई अपनी खुशी चाहता है इसलिए खुशी चाहने लायक चीज है, ये है तर्क?
हाँ, ये उनका पहला कदम है। हर व्यक्ति अपनी खुशी चाहता है इसलिए खुशी उस व्यक्ति के लिए अच्छी है, और अगर हर व्यक्ति की खुशी अच्छी है तो सबकी खुशी, सामान्य खुशी भी सबके लिए एक अच्छी चीज है। इसलिए खुशी ही वो अंतिम लक्ष्य है जिसके लिए बाकी सब चीजें साधन है।
लेकिन रुकिए, क्या हम सिर्फ खुशी ही चाहते हैं? लोग तो पैसा, शोहरत, ताकत, यहाँ तक कि नेकी भी चाहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि लोग खुशी की परवाह किए बिना नेकी के पीछे भागते हैं।
हाँ, मिल इस बात को मानती हैं, लेकिन उनका जवाब ये है कि ये चीजें या तो शुरुआत में खुशी पाने का जरिया होती हैं, जैसे पैसे से खुशी मिलती है, या फिर आदत और जुड़ाव के कारण ये खुद ही खुशी का हिस्सा बन जाती हैं।
अच्छा, कैसे? मैं खुशी देने वाला बन जाता है, वो उसे किसी और फायदे के लिए नहीं करता, नेकी खुद ही उसकी खुशी का एक हिस्सा बन गई है। तो अंत में हर चीज जो हम चाहते हैं वो या तो खुशी का साधन है या खुशी का हिस्सा, इसलिए खुशी ही एकमात्र अंतिम वांछनीय चीज है।
ये तर्क थोड़ा घुमावदार जरूर है, पर मैं समझ रहा हूं कि वो हर चीज को अंततः खुशी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती पर, अध्याय 5, न्याय और उपयोगिता के बीच संबंध पर। क्या उपयोगितावाद कभी अन्याय को सही ठहरा सकता है?
हाँ, ये वो सवाल है जो उपयोगितावाद के आलोचक सबसे ज्यादा उठाते हैं। क्लासिक उदाहरण है, क्या ज्यादा लोगों की खुशी के लिए किसी एक बेगुनाह को सजा देना ठीक हो सकता है? ये हमारी न्याय की भावना के खिलाफ जाता है ना?
हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि कुछ चीजें तो बस गलत हैं, चाहे नतीजा कुछ भी निकले, किसी बेगुनाह को सजा देना गलत है, बस।
मिल इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लेती हैं। वो पहले ये समझने की कोशिश करती हैं कि न्याय का मतलब आखिर होता क्या है। वो देखती हैं कि न्याय में कई चीजें शामिल हैं, जैसे किसी के कानूनी अधिकार ना छीनना, किसी के नैतिक अधिकार मॉरल राइट्स का सम्मान करना, जिसके साथ जैसा किया गया है वैसा बदला देना, वादा निभाना, निष्पक्ष होना, बराबरी का व्यवहार करना, कई पहलू हैं।
तो इन सब अलग अलग विचारों में कुछ कॉमन है, न्याय का सार क्या है मिल के हिसाब से?
मिल कहती हैं कि इन सब के मूल में किसी व्यक्ति के नैतिक अधिकार मॉरल राइट का सम्मान करने का विचार है। अन्याय तब होता है जब किसी व्यक्ति के ऐसे अधिकार का हनन होता है जिसे समाज को सुरक्षा देनी चाहिए।
ठीक है, ये समझ आया, लेकिन समाज को इन अधिकारों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्या ये उपयोगिता से बढ़कर कोई चीज है?
यही मिल अपना सबसे महत्वपूर्ण तर्क देती हैं। वो कहती हैं, नहीं, समाज को इन अधिकारों की रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये सामाजिक उपयोगिता, सोशल यूटिलिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
सबसे ज्यादा जरूरी कैसे?
सोचिए, न्याय की भावना कहाँ से आती है? मिल कहती हैं, ये दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो आत्मरक्षा की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति, हम चाहते हैं कि हमें नुकसान न पहुंचे, और दूसरी हमारी सहानुभूति, हम नहीं चाहते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे। और इन अधिकारों में सबसे जरूरी कौन से हैं?
कौन से?
वो अधिकार जो हमारी सुरक्षा, सिक्योरिटी से जुड़े हैं, जान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा, अपने अधिकारों की सुरक्षा। सुरक्षा किसी भी इंसान की खुशी के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। अगर हमें यही भरोसा ना हो कि हम सुरक्षित हैं, तो हम किसी और चीज का आनंद कैसे ले सकते?
सही बात है।
इसलिए न्याय उपयोगिता के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उपयोगिता का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बुनियादी है। न्याय के नियम असल में वो सामाजिक उपयोगिताएं हैं जो इतनी जरूरी हैं कि उन्हें बाकी नियमों से ज्यादा वजन देना पड़ता है, और वो हमें ज्यादा पवित्र या अनिवार्य महसूस होती हैं। एक न्यायपूर्ण समाज में जो भरोसा और स्थिरता होती है, वही लंबे समय में सबसे ज्यादा खुशी पैदा करती है।
वाह, तो मिल ने न्याय को भी उपयोगिता के दायरे में ही समेट लिया, बल्कि उसे सबसे महत्वपूर्ण जगह दी। ये तो काफी प्रभावशाली तर्क है, इसने तो मेरी सोच बदल दी थोड़ी।
बिल्कुल। तो इस पूरी गहन चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं?
मेरे लिए तो सबसे पहली बात वही है, सुखों में सिर्फ मात्रा नहीं गुणवत्ता भी मायने रखती है। वो उच्च सुख वाली बात, जैसे हम कहते ना कि ज्ञान का सुख या किसी की मदद करने का संतोष, वो शायद पार्टी करने या शॉपिंग करने के सुख से ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है। मिल इसी को दार्शनिक आधार दे रहे थे।
हाँ, और दूसरी अहम बात ये कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी है। उपयोगितावाद हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने से रोकता है और समाज के बारे में सोचने को कहता है। ये जो भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, ये कहीं ना कहीं मिल की सोच से मेल खाती है कि सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है।
तीसरा, जो अभी हमने देखा, न्याय उपयोगिता का दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे पक्का दोस्त है। सुरक्षा और अधिकारों का सम्मान सबके लिए जरूरी है। जब हम एक निष्पक्ष कानून व्यवस्था या ईमानदार सरकार की मांग करते हैं, तो हम असल में लंबी अवधि की सामाजिक उपयोगिता की ही बात कर रहे होते हैं।
बिल्कुल। चौथा, नैतिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि तर्क और अनुभव से सीखी और सुधारी जा सकती है। हमें सिर्फ परंपराओं या भावनाओं पर नहीं टिके रहना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि क्या चीजें वाकई में लोगों की भलाई कर रही हैं। समाज बदलता है, हमारी समझ बदलती है, और नैतिकता भी विकसित हो सकती है।
हाँ, जैसे सती प्रथा खत्म हुई, या अब हम पशु अधिकारों की बात करते हैं।
सही कहा। और पांचवा, हमारी सामाजिक भावनाएं, हमारी सहानुभूति, हमारी अंतरात्मा, ये नैतिकता की असली जड़ें हैं।
दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता ही हमें अच्छा इंसान बनाती है। ये सिर्फ बाहरी नियम नहीं, अंदर की प्रेरणा है।
हाँ, ये सारी बातें मिलकर उपयोगितावाद की एक ज्यादा मानवीय और व्यवहारिक तस्वीर पेश करती हैं। मिलके लेखन में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो बार बार याद आती हैं। कुछ मुख्य विचारों को दोहराएं क्या?
जरूर। पहली तो वही जो मूल मंत्र है, कर्म सही है यदि वे खुशी को बढ़ावा देते हैं, गलत है यदि वे खुशी के विपरीत उत्पन्न करते हैं। ये परिणामों पर जोर देती हैं, एक्शन का रिजल्ट क्या है।
दूसरी वो यादगार पंक्ति, एक असंतुष्ट इंसान होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है, एक संतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है। ये मानवीय गरिमा और उच्च सुखों के महत्व पर जोर देती है।
तीसरी वो प्रमाण वाली बात, थोड़ी विवादास्पद शायद पर अहम। एकमात्र प्रमाण की कोई चीज वांछनीय है यह है कि लोग वास्तव में उसे चाहते हैं। ये नैतिकता को मानवीय अनुभव से जोड़ने का प्रयास है।
और चौथी, न्याय पर उनकी गहरी सोच का सार। न्याय कुछ नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण के अनिवार्य तत्वों से बाकी नियमों की तुलना में अधिक निकटता से संबंधित हैं। ये न्याय को उपयोगिता के केंद्र में रखता है, खासकर सुरक्षा के मामले में।
तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है सिद्धांत रूप में, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? हम इन विचारों का क्या करें?
तुष्टि, या शायद किसी उच्च सुख को चुन रहा हूँ।
हाँ, जैसे करियर चुनते वक्त सिर्फ पैसा नहीं बल्कि काम का समाज पर क्या असर होगा ये सोचना, या कोई चीज खरीदते वक्त ये सोचना कि ये कैसे बनी है, क्या इससे किसी का शोषण तो नहीं हुआ।
बिल्कुल, और समाज या नीति के स्तर पर तो ये बहुत काम का है। जब सरकार कोई योजना बनाती है तो उसे ये देखना चाहिए कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कैसे हो और किसी को अनावश्यक नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो पर्यावरण की नीति हो, स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की। ये एक तरह का नैतिक ऑडिट टूल बन सकता है।
हाँ, और दान पुण्य या सामाजिक कामों में भी आजकल इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म की बात होती है, यानी अपना समय और पैसा वहां लगाना जहां उसका सबसे ज्यादा सकारात्मक असर हो। ये भी तो उपयोगितावादी सोच ही है कि हम भावनाओं में बहकर मदद करने के बजाय सोच समझकर मदद करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दुख कम हो सके।
यहाँ तक कि बिजनेस में भी अब कंपनियां सिर्फ मुनाफे की नहीं बल्कि स्टेक होल्डर वैल्यू की बात करती हैं, यानी उनके काम का असर कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज और पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है। एक जिम्मेदार बिजनेस चलाना भी उपयोगितावाद के अनुरूप है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख या टेक अवे क्या है?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिकता कोई आसमान से उतरी रहस्यमयी चीज नहीं है। ये जमीन से जुड़ी है, हमारे अनुभवों से, हमारी भावनाओं से और हमारे तर्क से। मिल ने दिखाया कि खुशी और भलाई की बात करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये न्याय और सहानुभूति के साथ चल सकता है, बल्कि चलना ही चाहिए। और हाँ, वो उच्च और निम्न सुखों का फर्क, ये मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिंदगी में किन चीजों को वाकई महत्व दे रहे हैं।
और मेरे लिए ये कि नैतिकता स्थिर नहीं है, ये विकसित हो सकती है। हम लगातार सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और समाज के तौर पर भी। ये विचार कि हमारी खुशी दूसरों से जुड़ी है, ये हमें ज्यादा जिम्मेदार और करुणामय बनाता है। उपयोगितावाद एक तरह से हमें लगातार सवाल पूछने के लिए उकसाता है, क्या हम चीजों को और बेहतर बना सकते हैं सबके लिए।
बिल्कुल, ये एक आशावादी दर्शन भी है जो मानता है कि मानवीय प्रयासों से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता।
तो शायद हम अपने श्रोताओं को इसी सवाल के साथ छोड़ सकते हैं, वो कौन सा एक छोटा कदम हो सकता है जो वो आज उठा सकते हैं जिससे उनके आसपास की दुनिया में थोड़ी सी खुशी बढ़े या थोड़ा सा दुख कम हो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।